جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چن کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت سارے شریعت کے مسائل سیکھتے ہیں. آپ کی کالز ایسے میں شامل سلسلہ کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کی جائیں گی. ابتداء درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں, اب بندی کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر جہاں نماز کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو بہت اہم یہ فرض ہے, اور یقیناً ظاہر اسی فرض ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا جو صاحب نصاب ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے, قرآن و حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں, نہ دینے کی کیا وعیدیں ہیں, کیا عذاب بیان کیے گئے, اور ساتھ ہی یہ کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہوتی ہے, اس کا نصاب کیا ہے, کن اموال پر زکوٰۃ جو ہے لازم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ زیر بحث ہوں گے, گفتگو ہوگی. اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. عموماً ہمارے سلسلوں کے اندر زکوٰۃ سے متعلق کالز تقریباً آتی رہتی ہیں, تو آج خاص اس موضوع کو لیا ہے تاکہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اس پر گفتگو ہو جائے. الحمدللہ مفتی صحیح صاحب تشریف فرما ہے. پہلا سوال میں ان سے اس حوالے سے عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, ابتداء اس پر گفتگو, پھر اس کے بعد مزید آگے ہم بات کریں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے, جن میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں.
جی,
اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
جی,
ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم, جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا, وہ یہ گمان نہ کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توغ ڈالا جائے گا جس کے ساتھ یہ بخل کرتے ہیں. چند احادیث مبارکہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. مزید فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا, پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ ولا یحسبن الذین یبخلون یہ ارشاد فرمائی. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا, مالک کو دوڑائے گا, بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں دے دے گا. مزید ارشاد ہوتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. مزید ارشاد فرمایا کہ خشکی تری میں جو مال تلف ہوتا ہے, یعنی جو مال ضائع ہوتا ہے, تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں, جو ان میں تین ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ پوری چاروں نہ بجا لائے, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج بیت اللہ. مزید ارشاد فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو,
صحیح,
اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, اور بلا نازل ہونے پر دعا سے استعانت کرو. یعنی مال کی حفاظت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو.
زکوٰۃ
تو زکوٰۃ دینے سے مال جو ہوتا ہے مضبوط قلعوں میں ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح متعدد جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہیں جن میں سے میں نے آپ کو چند پیش کی ہیں.
مدی شر کے ناظر مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث سے یہ بات ہم تک پہنچائی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا اور احادیث میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے اس کی اہمیت پر, اور بالخصوص اسلام کے جو ارکان ہیں, جو ستون ہیں, اس میں سے ایک ستون زکوٰۃ کو فرمایا گیا. ساتھ ہی یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی وعید پر بھی کلام ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, مزید بھی قرآن کی آیت میں اور احادیث میں اس حوالے سے وعیدیں موجود ہیں. اچھا حضور, زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس پر فرض ہوتی ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں اس میں تفصیل ہے.
جی
پہلے تو زکوٰۃ کا معنی اس کا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مال کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کسی مسلمان شریف فقیر کو مالک بنا دینا ہے.
ٹھیک ہے,
شرائط کے ساتھ اس کا معنی کہ مال کا مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے. زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے, اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک
ہے, اور وہ فاسق کہلائے گا اور اس کی گواہی جو ہے وہ مقبول
نہیں
ہوگی. اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے, آپ نے یہ سوال کیا ہے, یعنی اس کی کیا شرائط ہے؟ اس کی چند شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا,
صحیح, بنیادی شرط ہے.
بنیادی شرط ہے کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں, یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو زمانہ کفر کی زکوٰۃ کا مطالبہ اس سے
نہیں
کیا جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا,
صحیح,
بالغ ہونا. تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی,
صحیح,
نابالغ کی ملکیت میں چاہے کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب بالغ ہونا سے مراد یہاں یہ ہے, اب شریعت نے جس کو بالغ مانا ہے,
صحیح,
بچی جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے, اور بچہ 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتے ہیں,
صحیح,
اگر بلوغت کے آثار ظاہر ہوں. اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کا بچہ اور بچی دونوں جو ہے شرعی طور پہ بالغ مانے جائیں گے,
صحیح,
اور اگر ان کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال ہوگا دیگر شرائط کے ساتھ تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح ایک شرط ہے کہ عقل, یعنی عاقل ہونا. تو جو مجنون ہے, جو پورا سال مجنون جنون کی کیفیت میں ہے, یا اسی طرح وہ نابالغی کے حالت شروع سے ہی وہ مجنون تھا,
صحیح,
تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا. پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا کیونکہ غلام کی ملکیت میں کوئی مال نہیں ہوتا تھا,
صحیح,
جو کچھ ہوتا تھا وہ آقا کا ہوتا تھا, اس لیے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, آزاد پر ہوتی ہے. اسی طرح ایک شرط یہ بیان کی کہ مال جو ہے بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو,
صحیح,
اگر نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. نصاب کتنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. اور پورے طور پر اس کا مالک ہو اور اس کے قبضے میں ہو. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے, یعنی قرض سے فارغ ہونا. نصاب کا مالک ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے,
صحیح,
کہ وہ قرضہ ادا کرے تو نصاب نہیں بچتا, یہ نصاب سے کم بچتا ہے,
صحیح.
اب وہ قرضہ خواہ بندے کا ہو جسے قرض لیتے ہیں, یا اللہ کا قرض ہو,
صحیح,
جیسے اس نے گزشتہ سالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی, تو یہ بھی اس پر قرض ہے,
صحیح.
اب مثال میں دیتا ہوں, اب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, ठीक है, अब वो 10 सालों से जकात अदा नहीं कर रहा,
सही
सोने के अलावा कुछ नहीं है,
सही
उस पर सर 1 साल की जकात फर्ज होगी,
सिर्फ 7.5 तोला सोना हो जब।
हाँ जब, क्योंकि जब 7.5 तोले सोने पर जो माशा और रत्ती जो जकात जो भी बनती है वो जब उसमें से निकाला जाएगा तो 7.5 से कम हो गया,
कम हो गया,
तो ये भी एक कर्ज है, ये भी निकाला जाएगा। तो इस तरह का कर्ज, इस तरह कोई चीज खरीदी थी उधार,
सही,
या लोन लिया था, तो जो वो कर्ज लिया था वो माइनस किया जाएगा। इसके अलावा जो है एक शर्त ये है कि वो उसका माले नामी होना,
सही,
जैसे सोना चांदी इन पर तो मुतलकन जकात है ना,
ठीक है,
चाहे हम इस पे तजारत की नियत करें या ना करें, हमने उसको पहना हो या ना पहना हो, बहर सूरत जो है इस पर
जकात
होती है। और दूसरी सूरत यह है माले नामी की, माले तिजारत, यानी किसी कोई भी चीज आपने बेचने की नियत से खरीदी उस पर जो है वो जकात
हो जाएगी,
लाजिम होगी। और इसी तरह 10वीं शर्त यह है कि साल गुजरना,
सही,
साल गुजरने से मुराद या कमरी साल मुराद है,
सही,
यानी चांद के जो महीने होते हैं ये कमरी साल मुराद हैं, और हर एक को ये याद रखना ये जरूरी है, जो भी साहिब निसाब है उसको याद रखना चाहिए कि इस्लामी तारीख कौन से महीने की कौन सी तारीख को वो साहिब निसाब हुआ था,
सही,
और अगले साल उसी इस्लामी महीने की तारीख, चाहे वो रमजान हो, शाबान हो, मुहर्रम हो, जुलहिज्जा हो, हर एक की जाहिर साल जो है वो मुख्तलिफ होता है। अगरचे लोग जो इन महीनों में शाबान रमजान में जो है वो जकात निकाल रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर एक का साल रमजान में ही पूरा होता हो, कईयों का साल मुहर्रम में पूरा होता होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी का साल रजब में पूरा हो रहा है, वो बोले यार चलो मैं रमजान में निकाल दूंगा ज्यादा फजीलत, तो ये ज्यादा फजीलत उसको नहीं बल्कि ये ताखीर का गुना उसे मिलेगा। तो हर एक को गौर जन्ने गालिब करना चाहिए कि उसका साल कब पूरा होता है, निसाब पर साल कब पूरा होता है। तो इस तरह साल गुजरना जो है ये शर्त है। तो ये तमाम शराइत पाई जाएंगी किसी शख्स पर, तो उस पर जो है वो जकात देना लाजिम होगा।
माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने तफसील से इस चीज को बयान कर दिया कि जकात का माना क्या है, इसका हुक्म क्या है, और जकात किस पर फर्ज होती है, इसको भी बयान किया गया। यकीनन आप तवज्जो से देख रहे होंगे, बहुत अहम मालूमात हमें घर बैठे मिल रही है, आपकी कॉल्स और SMS भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। अभी गुफ्तगू इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ाएंगे, आइए आपकी कॉल्स को लेते हैं।
एक प्लॉट हमने बुक करवाया था 2014 में, तो वो किस्त जो थी सारी हमने उसकी पे कर दी और उसका अभी हमें कब्जा मिला नहीं है, तो क्या उस पर जकात हम फर्ज होगी या क्या हो?
किस्तों पर खरीदो फरोख्त प्लॉट्स की इसकी ये भी ठीक ठाक एक काम है।
देखें इसमें हमारी आगे गुफ्तगू चलेगी
जी जी,
कि इन्होंने जो प्लॉट लिया है अब प्लॉट उन्होंने किस नियत से लिया ये देखा जाएगा,
ठीक है।
अगर तो अपनी रिहाइश के लिए लिया है तो इन पर तो जकात नहीं है,
सही,
फ्लैट या प्लॉट जो भी लिया है। तो अगर इन्होंने इस नियत से लिया कि मैं इसको बेचूंगा,
सही,
अपने पास अपना है मकान, बाद लोग होते हैं कि प्लॉट ले लेते हैं, नियत यही होती है यार इसको बेचेंगे, तो इस सूरत में ये माले तिजारत हुआ,
सही,
तो इस सूरत में साल ब साल जो इस पर जकात
होती रही,
वाजिब होती रहेगी। अलबत्ता इनको कब्जा नहीं मिला, तो कब्जा मिलने के बाद इन्हें गुज़श्ता सालों की भी जकात हिसाब निकाल के निकालनी लाजिम होगी,
ठीक जी। मजीद खोल लेंगे।
मेरा नाम मोहम्मद अली सर, मैं मियांवाली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 10 लाख रुपए नकद और 7 तोला सोना है, तो इस हिसाब से हम पर कितनी जकात फर्ज है?
जकात का फार्मूला इरशाद फरमा दें, क्योंकि अमूमन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जकात देनी कितनी है, 10 लाख पर बनेगी कितनी है, सोने पे कितनी बनेगी, फार्मूला भी अगर
देखें। अगर तो ये जो सूरत बयान की है, तो एक शख्स उसके पास 7 तोला सोना भी है, उसी की मिल्कियत में 10 लाख रुपए भी हैं, तो फिर तो जकात बनेगी बनेगी,
ठीक है।
अब उमूमी तौर पर जकात जो है लोग रकम से ही अदा करते हैं
जी।
अब वो 7 तोले सोने की जो कीमत बनती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी उसका जेवर की जो कीमत है वो लगाए 7 तोले की क्या है, और 10 लाख रुपए इनको जमा कर दे,
सही,
तो टोटल रकम का 2.5%, यानी कुल रकम को 40 से तकसीम कर दे तो जकात निकल आएगी। लाख पे 2,500 रुपए जकात होती है, आसानी के लिए बयान किया जाता है। और जितनी भी टोटल के लिए 10 लाख तो है इनके पास, जेवरात की कितनी कीमत बनती है मालूम कर ले,
बनती है मिसाल के तौर पे, तो 15 लाख रुपए हो गए, 15 लाख को ये 40 पर डिवाइड कर दें,
जकात निकल,
जो आंसर आएगा वो उनकी जकात बन जाएगी।
बिल्कुल,
ये बहुत आसान सा एक फार्मूला है मदी चैनल के नाजरीन, के जितना भी आपके पास माल है, मतलब सोना है, चांदी है, जो भी उसकी शराइत जो भी गुफ्तगू ऐसे चल रही है, आप उसकी कीमत बना लें मिसाल के तौर पे, जैसे ये कॉल जो भी हमें आई थी, तो ये हम मतलब मिसाल बना रहे हैं कि 15 लाख रुपए ये बने, तो इसको हम 15 लाख को कैलकुलेटर पर लिख कर इसको डिवाइड कर दें 40 से 40 से, तो जो आंसर आएगा ये इनकी जकात बनेगी। ये फार्मूला है, बहुत आसान है, ताकि मदीशन के नाज़रीन जो दीगर हमें देख रहे हैं उनको अपनी जकात देने के हवाले से प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जकात के हवाले से हमने इसका हुक्म भी सुना किस पर फर्ज है, किस किस माल पर, जैसे अगरचे गुफ्तगू में आ गया लेकिन अगर अलग से बयान हो जाएगा तो आसानी
जी,
होगी।
अगर तो मैं ये समझता हूँ, अगर ये बात समझ लें जो मैं बयान करने लगा हूँ,
जी,
तो शायद हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये मालूम करना है कि किस माल पे ज़कात है किस माल पे नहीं है।
ठीक है,
समझने के लिए ये है कि देखें, सिर्फ तीन किस्म के माल पर ज़कात होती है,
ठीक है,
इसके अलावा और कोई कोई चौथी चीज नहीं है।
सही,
पहली किस्म है कि सोना चांदी, इन पे तो ज़कात होगी होगी, सबके निसाब के बराबर हो। सोना चांदी में आपकी करेंसी भी आ गई, प्राइस बॉन्ड भी आ गए, ये सब आ जाएंगे,
सही, ठीक
ठीक है, ये एक किस्म का माल कहलाएगा। दूसरी किस्म है माले तिजारत।
है,
माले तिजारत उसे कहते हैं कि आपने किसी चीज को इस नियत से खरीदा कि इसको मैं बेचूंगा,
बेचूंगा,
उससे माले तिजारत कहते हैं,
ठीक है,
माले तिजारत पे भी जकात होती है जबकि निसाब के बराबर हो। तीसरी किस्म है वो जानवर, चराई के जानवर उसे कहते हैं, सीन से साइमास का नाम होता है, चराई के जानवर हैं, उसके लिए शरीयत ने एक मखसूस मिकदार बयान की है,
ठीक
तो इन तीनों माल पे जकात होती है।
ठीक है,
इसके अलावा कोई चीज भी ऐसी नहीं। अब मिसाल के लोग बोलते हैं, यार हमारे घर पे जकात है या नहीं, हमने जो है वो मेरी गाड़ी पे जकात है या नहीं, घरेलू सामान जो घर हाजत से जायद होते हैं तो पूछते हैं उस पे जकात है या नहीं। आप देखें, क्या ये सोना चांदी है?
सही,
नहीं है।
नहीं है,
माली तजारत है? नहीं भाई,
नहीं है,
हमने तो इस्तेमाल के लिए खरीदा, बेचने की नीयत नहीं। और वो चराई वाले जानवर भी नहीं है। जब इन तीन किस्म के माल पर ये नहीं आ रहे तो जकात नहीं होगी।
सही है,
अब सवाल ये पैदा होता है, हीरे जवाहरात अगरचे कितनी कीमती हों,
सही है,
लेकिन अगर इसमें तिजारत की नीयत नहीं की, इस पे जकात नहीं
जकात
होगी,
नहीं है,
क्योंकि ना ये सोना चांदी में आ रहे हैं, ना ये माले तिजारत
तिजारत
में
में
आ
आ
रहे
रहे,
हैं, ना तीसरी किस्म में आ रहे हैं।
सही है,
तो ये तीन किस्म के माल पे जकात होती है। अगर
सही,
ये जहन में बिठा लें, कोई भी चीज तसव्वुर कर लें, यार फलां चीज पे जकात है या नहीं, तो ये कह लें यार तीन किस्म में आ रही है नहीं आ रही,
सही,
सोना चांदी करेंसी वगैरह में, माले तिजारत में आ रही नहीं आ रही, वो जानवरों में आ रही नहीं आ रही, तो अगर तीन किस्मों में नहीं आ रही तो ज़कात नहीं होगी।
सही, बहुत प्यारा फार्मूला है और बहुत आसान है वाकई अगर
जी
इसको
जी
समझ लिया जाए। अच्छा, मैं कुछ तवई के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, जैसे बाबुल मदीना है, बाबुल मदीना कराची के अंदर एक इलाका है, भैंस कॉलोनी, जहाँ से दूध हमें मिलता है, वो मिल्क हम पीते हैं, 10 लाख भैंसे हैं एक अंदाजे के मुताबिक वहां पर। तो अब ये जानवर तो हैं, क्या फरमाते हैं ये? सही,
जानवर पे या दो सूरतों में जकात होगी। एक तो जानवर आपने बेचने की नीयत से खरीदे तो माले तिजारत होने
में आ
की वजह से
जाएगा,
जकात हो जाएगी। दूसरे वो जानवर जो चराई वाले जानवर वो कहलाते हैं कि जो साल के अक्सर हिस्से में चर के गुजारा करते हो,
सही,
यानी जंगल बियाबान में जो मुबाह घास होती है उससे चरते हैं, तो उससे और वो जानवर से दूध बच्चे वगैरह हासिल करना मकसूद हो,
सही,
ठीक है ना, वो भी मखसूस तादाद है
सही,
कि 30 गायें 40 बकरियां हो, 5 ऊंट
हाँ,
हो, तो उस पर जकात होती है। लेकिन उमूमी तौर पे ऐसे जानवरों, हमारे यहाँ जानवरों को चारा ला के दिया जाता है, जब
खरीद
भैंसों की
से,
आपने मिसाल दी,
जी,
इनको तो चारा ला कर देते हैं, और जिन जानवरों को चारा ला कर दिया जाए तो उन जानवरों पे जकात नहीं
नहीं
होगी,
होती,
चाहे कितने ही क्यों ना हो।
ठीक है,
हाँ, एक सूरत है माले तिजारत की,
मारा तिजारा
माले तिजारत यानी इस नियत से खरीदे थे कि
कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो
इसको
बेच
बेच
देंगे,
देंगे, तो इस सूरत में जकात होगी वरना
नहीं। तो
नहीं होगी।
मदी शहर के नाज़रीन, तीन चीजें मुफ्ती साहब ने आसान करके हमें बयान कर दी, एक तो वही सोना चांदी करेंसी प्राइस बॉन्ड वगैरह, दूसरा माले तिजारत, और तीसरा वो जानवर जो चराई पर पूरे साल होते हैं, इन पर जकात हुआ करती है। बहुत आसान सूरत में इसको समझाया गया, और इसको अगर हम समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जकात के हवाले से हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि किस माल पर जकात है और किस पर नहीं है। अच्छा, हुजूर ये इरशाद फरमाए कि जैसे माल तिजारत का अगरचे आपने बयान कर दिया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग अपनी फैमिली के लिए घर जो है वो मुख्तलिफ खरीद के रखते हैं, भैया छोटे भाई का, बड़े भाई का, ये बहन के लिए, हालांकि एक घर में वो सब रह रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो घर लेकर, ताकि पैसे भी महफूज हो जाएंगे, तो मुख्तलिफ अगर घर हो हमारी मिल्कियत में ही हो तो उसपे क्या हो, ज़कात के हवाले से क्या होगा?
देखें, अगर नियत रिहाइश की है
जी
कि उसमें हम रहेंगे, یا بالفرض کرائے پر بھی دیا ہو
جی
تو اس پر زکات نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
چاہے کتنے گھر ہوں, کتنے پلاٹ ہوں, بیسیوں پلاٹ ہوں,
صحیح,
لیکن ان میں سے کوئی بھی پلاٹ اس نیت سے نہیں لیا کہ میں اس کو بیچوں گا,
صحیح,
اپنے استعمال کے لیے, بچوں کے لیے, رکھنے کے لیے اس نے رکھا ہے, تو ایسی صورت پہ زکات نہیں ہوگی. زکات اسی صورت میں ہوگی جب اس نے بیچنے کی نیت کی ہو.
ٹھیک ہے,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ضرورت سے زائد تو ہے,
صحیح,
ایک تو اپنا مکان ہے, یہ جو ہم سنتے ہیں حاجت سے زائد, حاجت سے زائد تو ہے,
صحیح,
حاجت سے زائد ہے, لیکن زکات فرض ہونے کے لیے آپ تینوں چیزیں دیکھیں گے,
صحیح,
ان تین قسم میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, یعنی سونا چاندی, مال تجارت, چرائی کے جانور, اگر ان تین قسموں میں نہیں ہے تو زکات فرض نہیں ہوگی.
سر گھر کے اندر بھی بہت سارا سامان ایکسٹرا ہم پاتے ہیں
جی,
فرنیچر کے حوالے سے, فریج ہے, کاریں ہیں, گاڑیاں ہیں, اور بھی, تو کیا فرمائیے ضرورت سے زیادہ سامان.
ضرورت سے زیادہ سامان دیکھیں, یہاں سمجھنا کیا یہ ہے, یہاں دو قسم کے نصاب ہیں. ہم اس نصاب پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس پر زکات فرض ہو, نکالنا لازم ہو,
صحیح,
ایک یہ چیز, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کون زکات لے سکتا ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے, وہ تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر ان تین قسموں میں نہیں آ رہا تو ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہوں ان پر زکات نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں جو نصاب کو پہنچتی ہیں,
صحیح,
اگرچہ اس پر زکات تو نہیں ہے لیکن ایسے شخص کو زکات دے نہیں سکتے.
اچھا, یہ حکم ہو جائے گا
کہ وہ غنی شمار ہوگا,
غنی ہوگا,
زکات لینا اس کے لیے حرام ہوگا,
صحیح,
کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسی چیزیں ہیں نصاب کے برابر تو وہ زکات لے نہیں سکتا, البتہ اس پر زکات دینا لازم نہیں,
صحیح,
کیونکہ میں شروع میں بیان کر چکا تھا کہ مال نامی ہونا شرط ہے,
صحیح,
کہ جو بڑھتا ہو, اس کو خلاصہ کر کے میں نے بیان کر دیا کہ تین قسم کے مال,
صحیح,
تو تین قسم کے مال ہیں, اگرچہ حاجت سے زائد ہے لیکن تین قسموں میں نہیں آ رہے تو زکات فرض نہیں ہوگی, یعنی نہ وہ سونا چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ چرائی کے جانور ہیں, تو ان پر زکات نہیں ہوگی.
اچھا, ابتدان جیسے آپ نے فرمایا 20 پلاٹ ہوں, 20 گھر ہوں تو زکات نہیں ہوتی, جبکہ ابتدان وہ مال تجارت یعنی بیچنے کی نیت والا ماں, لیکن یہ کہ مارکیٹ چڑھ گئی اور سننے میں آیا کہ بھائی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اب ہمارا ذہن بنا کہ اب بیچ دیں گے ہم.
دیکھیں شروع میں اگر نیت نہیں تھی,
صحیح,
خریدتے وقت یہی نیت تھی اپنے لیے رہے گا, رکھنے کے لیے, رہائش کے لیے,
جی جی,
اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی, بعد میں نیت بن گئی, تو بعد میں نیت بننے سے اس پر زکات نہیں ہوگی,
صحیح,
جب تک اس کو بیچ نہ دے دیگر شرائط کے ساتھ اس پر زکات نہیں ہوگی.
صحیح,
اسی طرح اس کا الٹ کر لیں,
صحیح,
کہ خریدتے وقت تو یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, ہوتا ہے بعض اوقات یار اس کو بیچیں گے, بعد میں نیت بدل جاتی, نہیں یار یہ ہاں اپنا گھر بنا لیتے ہیں, اچھی جگہ ہے, وہ جو ہے آسانی رہے گی ہمارے لیے, یا کوئی بھی کسی وجہ سے, تو اب بیچنے کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے.
صحیح,
یعنی خریدتے وقت تو نیت تھی اور یہ مال تجارت بن گیا تھا, خریدنے کے بعد ان کی نیت بدل گئی,
بدل گئی,
کیا اب ہم نے اس کو نہیں بیچنا, تو نیت بدلنے سے اب زکات نہیں ہوگی.
واہ,
بلکہ اگر نیت بدلنے کے بعد دوبارہ ارادہ بن گیا یار اب نہیں یار اس کو بیچتے ہیں, تو پھر بھی زکات نہیں ہوگی.
صحیح,
یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ پلاٹ پر زکات جب ہوگی کہ خریدتے وقت نیت ہو اور وہ نیت برقرار بھی
برقرار
ہو, اس کو میں نے بیچنا ہے,
صحیح,
اور بیچ میں اگر نیت ہو گئی, جب تک نیت تھی تو زکات دیتا رہے گا, بیچ میں نیت ہو گئی یار بس میں نے نہیں بیچنا ہے اس کو,
صحیح,
اس کو میں نے رکھنا ہی ہے, تو ایسی صورت میں زکات نہیں ہوگی.
علی شر کے ناظرین, کتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے اور کتنا زبردست, مطلب یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, بالخصوص مال تجارت کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اور بالخصوص گھروں کے حوالے سے, پلاٹس کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, لوگ لیتے ہیں بیچتے ہیں, تو اس کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ابتدان اور پھر اس نیت کا اینڈ تک باقی رہنا تو حکم کیا ہوگا, درمیان میں نیت تبدیل ہوئی تو حکم کیا ہوگا, اس کو بھی بیان کر دیا گیا.
اچھا, بیچ میں آپ نے وہ نصاب کا بھی پوچھا تھا,
جی جی,
نصاب وہ بھی بیان کر دیتا ہوں میں.
صحیح,
میں نے کہہ تو دیا بھائی سونا چاندی پہ زکات ہو,
صحیح,
اب کتنا سونا ہو کتنا چاندی ہو, تو شریعت نے جو سونے کی نصاب بیان کیا وہ ہے 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ سونا,
ٹھیک ہے,
اور چاندی میں 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر, کسی کے پاس ضرورت سے زائد رقم ہو یا اتنی مالیت کا مالی تجارت ہو,
صحیح,
تو اس پر زکات ہوگی. अब बाद वक्त क्या होता है कि सोना निसाब के बराबर नहीं है,
सही,
चांदी भी निसाब के बराबर नहीं है, अब क्या करें? इन्हें 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला सोना है,
सही,
और 5.5 तोला चांदी नहीं है, 1 तोला चांदी है,
1 तोला चांदी
ना, इस सोने का निसाब पूरा हो रहा है ना चांदी का निसाब पूरा हो रहा है। अब शरीयत से मुतारा ये फरमाती है कि इनको आपस में मिला लें,
सही,
इनको मिलाने से यानी सोने को चांदी या चांदी को सोना करके देखें कोई एक निसाब पूरा हो रहा है या नहीं,
सही,
अगर कोई एक निसाब पूरा हो जाए तो ज़कात होगी। फी ज़माना सोने को चांदी हम करें तो चांदी का निसाब बन जाएगा,
सही,
यानी 1 तोला सोना तो अब 70,000 के करीब करीब पहुंच गए,
सही है,
और 5.5 तोला चांदी जो है आज मैंने देखा तो ये 870 रुपए तोला चल रही,
सही,
और 10 ग्राम जो है 745 रुपए चल रही, तो 5.5 तोला चांदी जो कीमत बन रही है वो बन रही है 45,675, 870 रुपए तोला है तो निसाब बन रहा है 45,675 रुपए,
सही।
अब इनको मिलाकर अगर इतनी मालियत बन रही है वो बन जाती है तो फिर तो ज़कात होगी,
सही,
ठीक है। जहां बयान किया बयान किया जाता है कि 7.5 तोला सोना,
सही,
तो वो कब है जब सिर्फ 7.5
सिर्फ सोना हो, सिर्फ सोना,
अब किसी के पास सिर्फ सोना हो और कुछ ना हो तो फिर वजन देखेंगे, कीमत नहीं देखेंगे,
सही।
सवाल ये पैदा होता है आप तो ये भी कह रहे हो साथ, ये भी कहते हैं कि 7.5 तोले से कम सोने पे ज़कात नहीं, हालांकि किसी के पास 2 तोला सोना हो तो वो 5.5 तोले चांदी के से जायद है कीमत,
सही,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना है किसी के पास सिर्फ सोना हो तो भी कीमत नहीं देखेंगे,
सही,
फिर वजन देखेंगे, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले है या नहीं, 7.5 तोले से कम सोने पे ज़कात नहीं होगी, 7.5 तोले से कम सोने पे ज़कात उस वक्त होगी जब सोने के साथ कुछ चांदी भी हो,
सही,
या कुछ जरूरत से जायद रकम भी, और अमूमी तौर पर ऐसा होता भी है बाद वक्त जरूरत से ज्यादा कुछ ना कुछ रकम होती है जिस पर साल गुजर जाता है, ये चांदी की चैन या अंगूठी वगैरह रखी हुई होती है,
सही,
चाहे वो 4 माशे की क्यों ना हो, लेकिन सोने के साथ है तो हम मिला लेंगे, मिलाकर चांदी का निसाब देखेंगे, चांदी का निसाब पूरा हो रहा है तो ज़कात होगी वरना नहीं होगी। अब किसी के पास ना सोना हो और ना ही चांदी हो तो कितनी रकम हो,
सही,
वो बयान कर दिया कि 5.5 तोला चांदी के बराबर किसी के पास रकम हो जरूरत से जायद और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात होगी, या 5.5 तोला चांदी के बराबर माले तिजारत हो तो उस पर भी साल गुजरने पर जो है वो ज़कात लाजिम होगी।
माशाल्लाह तफसील से ज़कात के निसाब को भी बयान किया गया कि सोना कितना होगा तो ज़कात होगी, चांदी कितनी होगी तो ज़कात होगी, और ये दोनों अगर हैं तो उस सूरत में ज़कात किस तरह लाजिम होगी इसको भी बयान किया गया। इस सिलसिले में मजीद कॉल्स लेते हैं।
मेरा सवाल ये है कि एक शख्स के मेरे पास 3 लाख रुपए तकरीबन 1 साल और 5 तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, मेरे पास उसके 3 लाख रुपए मौजूद हैं, वो किसी वजह से मुझसे पैसे ले भी नहीं रहा, अब ये है कि इसके ज़कात का क्या हुक्म है, बड़ा मेहरबानी जरा बता दें।
यानी इस माल की मिल्कियत के हवाले से
देखें, ज़कात उस माल पर होती है जो आपकी मिल्कियत हो,
ठीक है,
वो किसी शख्स ने आपको दिए हुए हैं, आपने या तो उससे कर्ज लिए हुए हैं या उसने आपने पास अमानत
रखी हुई है, सही है,
तो वो तो उसका मालिक तो कोई और है,
सही,
तो ज़कात उस पर बनेगी, यानी जो मालिक है उस पर ज़कात बनेगी, अगरचे आपके पास रखे हुए या आपने कर्ज लिए हुए या अमानत आपके पास है तो आप पर इस माल पे ज़कात नहीं होगी, ज़कात उस मालिक पर ही होगी,
ठीक है, जिसकी मिल्कियत में माल ज़कात उसी पर होगी। जी मजीद कौन?
सर ये सवाल है कि ऐसा है कि मेरी शॉप है तो मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने कर्जा लेके अपनी शॉप जो है वो बनाई है, तो अभी मेरा काम तो चल रहा है लेकिन मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा मैं उतार भी रहा हूँ, मैं कर्जा दे रहा हूँ, मेरे ऊपर तकरीबन अभी 3-3.5 लाख रुपया कर्जा है, तो मैं कर्जा सब से उतार रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे ऊपर ज़कात बनती है या नहीं बनती?
अब ये देखेंगे इनके पास जो शॉप है इसके अंदर माली तिजारत कितनी मालियत का है,
सही,
अब मिसाल के तौर पर 10 लाख का माली तिजारत रखा हुआ है और 3 लाख का कर्ज है, तो 3 लाख माइनस करें बच्चे में से ज़कात देंगे,
7 लाख
में ज़कात देंगे, लेकिन अगर इनके पास इतना माल नहीं है, यानी दुकान से भी 3 लाख का ही माल रखा हुआ है बिल पर, 3 लाख का ही इन पर कर्जा है,
सही,
और उसके अलावा और भी कुछ इनके पास नहीं है माल नामी, तो इस सूरत में ज़कात नहीं होगी। हमेशा ये जहन में रखें कि जो मकरूज होता है जिस पर कर्ज हो, ऐसा नहीं है मुतलकन उस पर ज़कात ही ना हो,
सही,
वो ये देखेगा मुझ पर कितना कर्ज है,
सही,
और मेरे पास कितना माल है, तो जितना कर्ज है अपने कुल माल में से उसको माइनस करे, माइनस करने के बाद देखिए मेरे पास कोई बचता ही नहीं बचता, बचता है अगर निसाब के बराबर उससे जायद है तो ज़कात होगी वरना नहीं होगी।
जी मजीद खोल लेंगे।
मियां वाली से मोहम्मद खुर्रम रजा तारीयत कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में आता है कि अगर किसी शख्स को ये मालूम ना हो कि उसका साल कब शुरू हुआ था, वो साहिब निसाब कब हुआ था, अब कुछ साल ऐसे दो तीन साल गुजर भी चुके, अब उसको इलम हुआ कि मुझे ज़कात भी साल के बाद देनी है, तो अब वो पिछले सालों की ज़कात कैसे निकाले, ये उसको मालूम कैसे हो कि वो साहिब निसाब कब हुआ था। और दूसरा सवाल ये है कि ये नकदी रकम होती है क्या, ये हजरत असलिया में इसको शुमार
क्या फरमाते हैं? देखिए ये पता नहीं होता।
हाँ, ये अक्सर के साथ ऐसा मामला है
सही
कि वो ज़कात निकाल रहे होते हैं, मसला जब पता चलता है तो कहते हैं यार हमें याद नहीं है। अब ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा कहती है कि ज़न्न ग़ालिब करे, गौर खोज करे खूब कि मैं कब मेरे पास आए थे, हो सकता है मेरी बीसी खुली थी। इसी तरह जो शादीशुदा औरतें हैं इनके पास सोना जब इनकी मिल्कियत आता है, जब उम्मीद तौर पर कि जब इनका निकाह होता है
सही,
निकाह की तारीख का पता चल जाता है, उस हिसाब से इस्लामी तारीख का भी पता चल जाएगा। कोई भी ऐसी सूरत हो जिस तरफ जिस महीने की तरफ इस्लामी तारीख के हिसाब से ज़न्न ग़ालिब जाता है यार ये इस महीने में साहिब निसाब हुआ था, तो ज़न्न ग़ालिब करके उस महीने का ही एतबार करे और हर साल उसी महीने पे जो है वो ज़कात निकालता रहे। दूसरा मैंने सवाल किया नकदी,
नकदी
देखिए नकदी में भी हाजत असलिया से जायद पर ही होगा। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स 50,000 रुपए कमाता है महाना सैलरी उसकी, लेकिन 50 के 50 ही जो है वो
खर्च
हो जाते हैं,
तो
उसकी हाजत में ही खर्च हो जाते हैं। हाजत से जायद यानी महाना अखराजात वगैरह करके उसके बाद कुछ ना कुछ बच जाता है, हाजत असलिया से जायद उसके पास जो माल हो नकदी हो उस पर देखेंगे हम।
सही,
ऐसे नहीं देखेंगे अभी 50,000, अभी हमने सुना यार 52.5 तोला चांदी जो है वो 45,675 का है, मेरी तो सैलरी 50,000 है इस पर तो मुझसे ज़कात बन जाएगी, ऐसा नहीं।
सही,
ये जो 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम जो हमने देखनी है हाजत से जायद,
सही,
आपके सैलरी माना अखराजात वगैरह जो हैं वो निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं और वो जमा होते होते निसाब को पहुंच जाएंगे, अब आपका साल शुरू होगा।
सही,
साल के शुरू और आखिर में अगर आप साहिब निसाब हैं, दौराने साल कमी ज्यादती होती रही, बिल्कुल माल खत्म नहीं हुआ लेकिन कम ज्यादा होता रहा, लेकिन साल के शुरू और एंड में आप साहिब निसाब हैं तो आपको ज़कात निकालनी होगी।
नहीं, अल्लाह ताला का ये हम पे कितना करम है एहसान, और यकीनन अल्लाह से बढ़कर रहम करने वाला कौन है, वो अपने बंदों पर रऊफ और रहीम है। तो जाहिर आप देखें कितनी सारी शराइत इसकी ज़कात की बयान की गई, मुतलकन ये नहीं कहा गया कि अपने माल में ज़कात दो, शराइत बयान की गई है कि किस किस शर्त, जब ये सारी शर्तें पाई जाएंगी तो उस सूरत में ज़कात आप पर लाजिम होगी। हाँ, ये अलग बात है कि लोग जो दीनी शऊर रखते हैं, खौफ खुदा अज़्ज़ वजल का गलबा होता है, तो वही जरूर पूछते हैं कि यार मैं 50,000 रुपये महीना मेरी सैलरी है तो मेरी ज़कात का क्या होगा। यानी ये खौफ खुदा वाली बात है, वो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं गुनाहगार हो रहा हूँ, तो वो ये पूछते हैं। वरना एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जिनको ये पता होता है कि हम पर ज़कात फ़र्ज है लेकिन वो ज़कात नहीं निकालते, और कुरान में ऐसों के लिए अज़ाब की आयत है यानी वईदें भी बयान की गई हैं कि जिसके अंदर ये बताया गया कि कल क़यामत के दिन ये माल इनके गले में तो किस सूरत में डाल दिया जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग हीले भी करते हैं ज़कात से बचने के लिए, क्या फरमाइए आप?
देखें ये तो दुरुस्त नहीं है, ये ज़हन में रखें जब कुरान और हदीस में आ गया कि ज़कात देने से माल घटता नहीं है,
सुभान।
और अभी हदीस पाक सुनी कि जो भी खुश्की उतर में जो भी माल तल्फ होता है, जाया होता है, वो ज़कात ना देने की वजह से
होता है,
बेबरकती उसमें होती है, माल हलाक हो जाता है। ठीक है,
सही बात है।
जिस माल की अगर चाहे आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं
सही,
लेकिन उसकी ज़कात ना देने की वजह से वो माल हलाक हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि माल कहाँ चला गया।
सही,
और जब आप उसकी ज़कात देंगे और थोड़ा भी माल होगा अल्लाह ताला उसमें इसी बरकत,
ज़कात देने वाले की ज़कात बढ़ती है हर साल, ये भी
हकीकत है। हकीकत है, आप पूछ लें ज़कात देने वालों से,
हर साल बढ़ती,
अल्लाह ताला बरकत देता है। और यकीनन है जब कुरान और हदीस में आ गया कि इसमें बरकत होगी तो हमें हीले बहाने नहीं करना चाहिए।
सही,
कि भाई ज़कात से बचने का हीला हमें नहीं करना चाहिए, इसको ये मकरूह है। लिहाजा जो अगर हम पे ज़कात बनती है, खुश दिली के साथ हम ज़कात की अदायगी करें, फिर देखें क्या होता है, अल्लाह ताला किसी बरकतें नाज़िल फरमाते हैं।
जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ, सारा माल भी अल्लाह की राह में हम दे देंगे तो फिर भी हक थोड़ी अदा होगा, कि माल किसने अदा किया, अल्लाह ताला ने ही अदा किया। यानी हम में से हर एक जो दुनिया में आता है तो वो तो उसके जिस्म पे कपड़ा भी नहीं होता, तो अब वो پھر وہ بچپن کے پروسیس سے گزرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرتا ہے، یعنی ہم اپنا ماضی دیکھیں، بچپن سے تو مال تو تھا ہی نہیں، مال لے کر کہاں آئے تھے ہم، ہم تو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا، اب اسی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اسی کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہم ہیلے بہانوں سے کام لیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور، پورے سال لوگ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، رشتے داروں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی کرتے ہیں، تو ابتدان تو وہ دے رہے ہیں اس طرح، تو کیا سال کے اینڈ میں وہ نیت کر سکتے ہیں جو اب تک میں نے دیا وہ سب کا سب زکات میں شمار ہو جائے؟
نہیں، ایسا تو اب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، زکات کے لیے ضروری ہے کہ زکات دیتے وقت یا زکات کا مال علیحدہ کرتے وقت نیت شرط ہے،
ٹھیک ہے،
نیت ہونا شرط ہے۔
صحیح،
آپ نے زکات دے دی، ہاں دیتے وقت نیت نہیں تھی لیکن دے دی، اور ابھی اس کے پاس جس کو زکات دی اس کی ملکیت میں ابھی باقی ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔
صحیح،
آپ نیت کریں گے زکات ہو جائے گی، لیکن اب اس نے اس کو خرچ کر دیا تو اب اس میں زکات کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ کر سکتے ہیں، جسے سال بہ سال آپ نے کہا کہ وہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عمومی طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا ایسا کر کے کہیں غربا مساکین کو دیتے ہیں جو واقعی مستحق ہوں، ایڈوانس میں کچھ نہ کچھ نکالتے رہا کریں، زکات کی نیت
زکات دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں، شریف فقیر کو جو مستحق ہے زکات، یعنی آپ کو لگتا ہے اور آپ اس کو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، آپ کی زکات ادا ہوتی رہے گی۔ اس سال کے اینڈ میں اب آپ حساب لگائیں،
صحیح،
جو دے رہے ہیں لکھتے بھی رہیں ساتھ، یہ یاد رہے کہ میں نے کتنی زکات نکالی ہے اور مجھ پہ کتنی بنتی ہے، جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لیں۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 زکات بنتی تھی، میں جو 80,000 نکال چکا ہوں تو بقیہ 20,000 آپ فوری طور پہ نکال لیں، تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے، یعنی سال پورا ہو گیا نا تو آپ بولے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکالوں گا تو یہ گنہگار ہوں گے، یہ تاخیر شمار ہوگی۔ ایڈوانس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے ہیں،
صحیح،
سال پورا ہونے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکات جو ہے وہ زیادہ نکال دی، آپ اس کو اگلے سال کے اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ آسانیاں ہیں۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ نیت نہیں تھی ویسے ہی خیرات کر دی اور بعد میں کہہ رہے یار میں نے تو بہت خیرات کی ہیں، صدقہ کیا ہے، سب زکات کر دو، تو اب نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ دینے کے بعد اس کی ملکیت میں باقی ہے، اس نے خرچ نہیں کیے، تو اب زکات کی نیت کرے گا تو زکات ہوگی، ورنہ نہیں۔
مثال کے طور پہ کسی کو ہم نے پیسے دیے تھے قرض، وہ واپس ہی نہیں کر رہا، تو ہم بولے بھائی وہ قرض ہوتا نا وہ زکات ہو گیا،
اس کا یہ ایک صورت ہے کہ قرض معاف کرنے سے اس قرض پہ جو زکات بننی تھی وہ ساقط ہوگی۔
صحیح،
ایسا نہیں ہوگا کہ دیگر مال کی زکات بھی وہ بن جائے گا،
صحیح،
وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک صورت یہ فقہا کرام نے بیان کی ہے، اب واقعی نہیں دے سکتا، مستحق ہے اور چاہتے ہیں یار یہ مال زکات میں ادا ہو جائے، اتنی رقم اس کو زکات میں دے دے،
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے قرض تھا، اب نہیں ہے، مستحق بھی 1,00,000 روپے، اس کو کہا کہ یہ میں نے تمہیں زکات دی،
صحیح،
اب اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کر لیں، یا میرا جو آپ کا قرض ہے 1,00,000 مجھے واپسی دے دیں، تو اس طرح جو اس کی زکات ادا ہوگی، ورنہ وہ یہ چاہے کہ میں قرض معاف کر دوں دیگر مال کی زکات اس میں بھی ادا ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔
کیا ابھی جیسے آپ نے دوران کلام بھی فرمایا کہ بھئی یہ میں نے آپ کو زکات دی، کیا لفظ زکات کی ادائیگی؟
نہیں، یہ ضروری نہیں،
ضروری تو نہیں ہے،
یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا، اصل نیت ہی کافی ہے،
ٹھیک ہے۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکات کہہ کر دی جائے تو ان کو
مایوس
سمجھتے ہیں، تو ان کو آپ تحفہ کے طور پہ، ہدیہ اس طور پہ بھی دے سکتے ہیں، بچوں کے نام پہ دے دیا شنا کر کے، یار چلو بچوں پہ خرچ کر دینا، اس کی ملکیت کر دیا، نیت زکات کی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی دینے والا نیت اس کی زکات کی، لیکن زمان سے اگرچہ کوئی اور لفظ استعمال کر لے تو اس کی زکات ہو جائے، اور جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی زکات کے پیسے، اگرچہ اس کو وہ گفٹ سمجھ لے، تحفہ سمجھ لے، کچھ بھی سمجھ لے، لیکن دینے والے کی نیت اگر زکات کی ہے تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی،
ٹھیک۔ مدیشل کے ناظرین، موضوع آج ہمارا زکات ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں۔
مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جی یہ زکات کے اوپر جو بات کر رہے تھے، میں نے ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پر، تو میں چاہ رہا تھا بھی میں نے جو پلاٹ لیا تھا اس کی جو پیمنٹ میں دے چکا ہوں، مطلب 3,50,000 میں دے چکا ہوں، لیکن پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 6,00,000 روپے ہو گئی، تو مجھے زکات کس کے اوپر دینی ہے، 6,00,000 روپے دینی ہے یا 3.5؟
قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا،
صحیح،
آپ نے کتنے کا پلاٹ لیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، साल पूरा होने पर अब देखेंगे कि आप उस प्लाट की कीमत क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, खरीदा था मिसाल के तौर पे 5 लाख का, अब उसकी कीमत 8 लाख रुपए हो गई, तो 8 लाख में से ज़कात बनेगी।
सही,
अब ये किस अदा कर रहे हैं, तो जितनी किस्तें इन पर बाकी हैं तो ये इन पर कर्ज है।
ठीक है,
वो माइनस करेंगे, माइनस कर, यानी मौजूदा कीमत से उसको माइनस करके जो बाकी बचेगा उसमें से ज़कात होगी।
सही,
ठीक है, ये भी उस सूरत में है कि जब प्लाट इन्होंने बेचने की नीयत से खरीदा हो, जैसे पहले अर्ज कर चुका
हूं। सही,
अगर बेचने की नीयत नहीं, अपने लिए लिया है, रखने के लिए, रिहायश के लिए लिया है, तो ऐसी सूरत में तो ज़कात नहीं होगी।
सही,
और अगर बेचने की नीयत है तो तफसील अर्ज कर चुका हूँ कि साल पूरा होने पर जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से जो है उस पर ज़कात लाजिम होगी।
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये बनेगा कि मिसाल के तौर पर एक प्लॉट हमने खरीद लिया, उसका सौदा कर लिया, उसका एडवांस दे दिया, अब उसकी हमें पेमेंट करनी है, मिसाल 50 लाख रुपए हम उसकी पेमेंट करनी है, अभी हमने 5 लाख दे दिए, 45 लाख हमें देने, अब वो ज़ाहिर उसकी बात होगी 3 महीने के अंदर, 4 महीने में हमें पेमेंट करनी है, तो इस सूरत में क्या बनेगी ज़कात की, एक तो ये, दूसरा ये कि हमने रकम जमा करके घर में रखी हुई है, या जैसे ही कोई अच्छी चीज नजर आएगी मार्केट में, प्लॉट घर, तो हम फौरन उसको खरीद लेंगे। एक तो एडवांस दे दिया हमने कि बस अब पेमेंट का हमारा शेड्यूल बन गया है, ये दूसरा एडवांस दिया नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस हम इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन घर में अगर जो रकम जमा की हुई है, किसी भी नियत से जमा की हुई है, तो उस पे तो हाजत से जायज जो भी रकम होगी उस पे तो ज़कात होगी,
देनी पड़ेगी,
ज़कात तो लाजिम होगी। पहले जो आपने कहा कि वो एडवांस दे चुके हैं,
हाँ,
अब बकिया उन्होंने देना है,
देने,
तो बकिया जो उन्होंने देना है वो एक कर्ज,
सही,
उस पर देन है।
सही,
अब जो है दीगर माल ज़कात इनके पास है, सब कुछ करके और इस पर साल गुजर जाएगा। मैं अच्छा ये भी ध्यान में रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ साल गुजरना। अब हर चीज पर साल गुजरना जरूरी नहीं है।
सही,
यानी यहाँ पर साल गुजरने से मुराद निसाब पर साल गुजरना।
सही,
अब मिसाल के तौर पे किसी शख्स का जो है निसाब का साल पूरा होता है रमजान में।
सही,
अब उसने शाबान में प्लाट खरीद लिया।
सही,
अब एक महीने बाद बोले यार अभी तो इसको एक महीना हुआ, अगले साल शाबान में, नहीं
सही,
रमजान में उसका भी हिसाब करना होगा।
सही,
अगर तिजारत की नियत से तो निसाब पर साल पूरा होने से पहले जो जो आता रहेगा उसी में ऐड होता रहेगा,
उसमें ऐड होता रहेगा,
उसका साल पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। तो अब ये है कि एडवांस दे दिया उसने और बकिया किस्ते जो बाकी हैं इस पर कर्ज है।
सही,
वो माइनस करके बकिया में से ज़कात अदा करेगा।
अच्छा, इसी में अगर हम ये बात भी शामिल कर लें, जिस तरह आपने कहा कि रमजान शरीफ के अंदर उसका साल मुकम्मल हो रहा था और शाबान के अंदर उसके पास कोई रकम आ जाती है तो वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी ना,
शामिल,
हम ये तो नहीं कहेंगे भाई शाबान से इसका साल शुरू हो रहा है, तो माले विरासत कोई बॉन्ड लग गया, कोई डीसी खुल गई, कुछ इस तरह का माले विरासत ही मिल गया।
देखें माले विरासत कई किस्म के होते हैं ना।
जी,
माले विरासत में सोना चांदी भी होता है।
सही,
माले विरासत में नकदी भी होती है।
सही,
और माले विरासत में जायदाद भी होती है।
सही,
सोना चांदी नकदी जो माले विरासत में मिली उस पर तो ज़कात होगी, जबकि पहले से साहिब निसाब है या दीगर माल के साथ मिलकर शराइत पाई जाती है। बाकी रही जायदाद।
सही,
जायदाद जो मिलती है ना इस तरह विरासत में, तो उस पर जो है वो ज़कात नहीं होती।
सही,
किसी को विरासत में मिली जमीन वगैरह मिली, विरासत में मिली और बाद में उसने नीयत नहीं कर ली यार इसको मैं बेचूंगा, तो इस तरह उसकी नीयत करने से उस पर ज़कात नहीं होगी।
सही,
क्योंकि उसको विरासत में मिली थी, माले तजारत तो था नहीं, वो विरासत में मिली, जमीन मिली, अगर उसने बाद में उसमें तजारत की नियत भी कर ली बेचने की, तो उस जमीन पर ज़कात नहीं होगी। बाकी जो नकदी सोना चांदी, क्योंकि उस किस्म में आ रहा है ना, तीन किस्म, उस तौर पे अगर मिला है तो उस तौर पे ज़कात होगी निसाब के साथ, दीगर शराइत के साथ, वरना नहीं होगी।
जी, सिलसिले में मजीद आपकी कॉल्स लेंगे हम।
सर जी, मैं गुलाब मुस्तफा बात कर रहा हूँ जमालदीन वाली से। तो मौजूद चल रहे हैं ना सर ज़कात के मसाइल। सर जी, मैंने जमीन बेच दी है, एक चार कनाला जमीन बेची है 17 लाख की, मैंने कर्जे के लिए बेची है, क्या मेरे ऊपर भी ज़कात जायज है? मैं दे सकता हूँ जो पैसे बच जाए? मेहरबानी करें और ये मुझे बताएं कि क्या जितने पैसे भी मेरे बचेंगे कर्जे के बाद, क्या मैं वो उनमें से ज़कात दे सकता हूँ?
क्या फरमाते?
अब ये देखें कि इन्होंने जमीन बेची है, जमीन बेचने से पहले अब ये साहिब निसाब थे बिलफर्ज, तो उसका जो साल पूरा होगा तो इस रकम में से भी ज़कात होगी, यानी जो इन पर कर्जा है।
सही।
कर्जा निकालने के बाद बकिया रकम से जकात निकालनी होगी।
सही।
अगर तो जमीन बेचने से पहले इनके पास कुछ नहीं था।
सही।
जमीन भी अपनी थी, माले तिजारत नहीं थी, वैसे इन पर कर्जा था, इन्होंने बेच दी। तो अब कर्जा अदा करने के बाद जो इनके पास रकम बचेगी निसाब के बराबर से जाएगा, और उस पर जब साल गुजर जाएगा तो इस सूरत में इन्हें जकात निकालनी होगी।
ठीक है जी, मजीद कौन?
मेरा सवाल ये है कि अगर एक दुकान में 15 लाख रुपए का माल पड़ा है और उसको हम बेचने की नीयत से ही लाए हैं और बेचना ही है, तो अब साल गुजरने के बाद तो हम कैसे उसकी ज़कात देंगे? डेली बेस पे देंगे या साल गुजरने के बाद हम उसकी ज़कात देंगे? बराए मेहरबानी जवाब अर्शाद फरमा दी।
मेरी 15 लाख रुपए अभी है तो ज़ाहिर निसाब तो हो गया।
जी बिल्कुल।
तो अब एक साल बाद क्या होगा इसका तरीका?
देखे, दुकान में जो भी उमूमी तौर पे माल होता है ना, तो किसी पे साल नहीं होता।
सही।
वरना तो ये दुकानदार परचून वाले जो होते हैं, इन पे तो किसी माल पे ज़कात ना हो।
सही।
निसाब, क्योंकि 15 लाख निसाब से ज्यादा है।
ज्यादा।
अब जब इनका साल पूरा होगा,
ठीक है,
उस वक्त ये देखेंगे हमारे मेरी शॉप में अब कितना माल है।
माल है।
वो 15 लाख का माल हो सकता है 20 लाख हो गया।
सही।
ठीक है। तो मौजूदा साल गुजरने पर जितनी जितने मालियत का वो माल होगा उस टोटल में से जकात अदा करेंगे। अगर इन पर कर्ज भी हुआ तो कर्ज माइनस करने के बाद इन्हें जकात अदा करनी होगी। अगर से कुछ माल या भी एक महीना पहले लिया होगा, कुछ 2 महीने पहले लिया होगा, कुछ 1 दिन पहले लिया होगा, तो जब साल पूरा होगा तो टोटल में से हिसाब करना जरूरी। ये नहीं बोले यार 15 लाख था भाई, 15 लाख था, अब साल हो गया तो अब आपको हिसाब करना है हर चीज का। अब मेरे पास कितनी मालियत का माल है,
सही,
अंदाजा नहीं चलेगा, तखमीना यहाँ नहीं चलेगा, बकायदा हिसाब लगाना पड़ेगा ताकि उसमें कमी ना हो जाए।
सही।
हिसाब लगाएगा, आप देखिए कितना है, हो सकता है कम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जो भी हो, कमी बेशी जो भी सूरत हो, तो उस सूरत में हिसाब लगाकर इन्हें ज़कात अदा करनी होगी।
जी अगली कॉल।
आप बात कर रहे हैं लाहौर से। मैंने पूछा था कि जैसे दुकान के अंदर माल होता है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको देना होगा जितने भी उसने खरीदा है या जिससे बेचेगा उसके हिसाब से उसको करना होगा?
अमूमन माल सस्ता लेते हैं और महंगा बेचते हैं।
यहाँ कीमत खरीद का एतबार नहीं।
सही।
ना कीमत के खरीद का एतबार है, ना कीमत फरोख्त का एतबार।
सही।
मार्केट वैल्यू का एतबार है, यानी जो होलसेलर है वो होलसेलर के हिसाब से लगाएगा, जो रिटेल बेचता है वो उस हिसाब से लगाएगा। साल पूरा होने पर जो है आप देखेगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगरचे उसने खरीदा कम में था लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है जितनी होगी उस हिसाब से उसे ज़कात अदा करनी होगी।
सही। मिसाल के तौर पर सोना है, आजकल सोने का रेट 70,000 तक पहुंच गया है। आजकल ऐसा भी हो सकता है कि एक महीने बाद ये 50 पर आ जाए, ज़ाहिर है उस हिसाब से हम पैसे देंगे ना ज़कात के, तो ये तो नहीं होगा कि 70,000 के हिसाब से देंगे।
नहीं, मौजूदा वैल्यू यानी जिस दिन साल पूरा होगा उस दिन के वैल्यू का एतबार है कि उसकी क्या कीमत।
क्या कीमत। जी अगली कॉल।
इसके अंदर जैसे हमने प्लाट कहीं लिया हुआ है दूर, तो हमने दूर लिया हुआ है, मकसद हम ये चाहते हैं कि उसको बेच के फिर करीब लेंगे, अभी हमने बहुत दूर लिया हुआ है तो हम उसको बेच के, मकसद हमने जो नियत की बेचने की, बेच के हम उसको अपने बच्चों के लिए करीब लेंगे, तो क्या इसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं?
वो जो दूर प्लाट लिया था वो भी अगर बेचने की नीयत से लिया था तो उस पर ज़कात है।
ठीक है।
अगर वो लिया था बच्चों के लिए, अपने लिए लिया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ यार ये तो बहुत दूर है,
अब बेच के करीब
बेच के, तो अब उस पर ज़कात नहीं है जब तक आप उसको बेचे नहीं। बेचने के बाद अगर साल पूरा दीगर निसाब के साथ मिलकर दीगर शराइत पाई जाती है तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। यानी वही बात है कि खरीदने के बाद अगर नियत बनी है तो वो माली तिजारत
नहीं
में नहीं आएगा, खरीदते वक्त नियत हो और वही नियत बरकरार हो तो ज़कात होगी।
जी मजीद कौन?
सवाल ये है कि मेरी दीगर की दुकान है, मेरे पास तकरीबन 20 तोले सोना है और 12-15 किलो चांदी पड़ी हुई है, उसका कैसे होगा?
जी ज़कात कैसे होगी? 20 तोला सोना है, 15 तोला चांदी है।
अब इसका सिस्टम ऐसा होगा कि इनको आपस में दोनों की कीमत आसानी सूरत बयान कर रहा हूं मैं, सोने की कीमत और चांदी की जो कीमत बनती है, क्योंकि रकम से ही ज़कात देते हैं।
सही।
वरना तो अगर देखा जाए 7.5 तोले का एक निसाब है।
सही।
7.5 तोले से खुमस निसाब, यानी 1.5 तोला अगर ज्यादा हो तो उस पर ज़कात होती है ना।
सही।
और 1.5 तोले से जो कम होगा उस पर नहीं होगी।
सही।
अब ये इसका हिसाब जरा मुश्किल होता है।
सही।
आसानी के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनके पास जितना सोना है सोने की कीमत लगा लें और चांदी की कीमत लगाने,
सही
ठीक है, और दोनों की कीमत जमा करके टोटल में से 2.5% ज़कात दे,
वही
फार्मूला जो बताया गया 40 पे तकसीम कर दें,
ठीक है,
ज़कात निकल आएगी
जी। अगली कौन?
प्यारे असलामी भाई, मैंने ये पूछना है कि क्या एक असलामी भाई की तनख्वाह है 30,000, क्या उस पे भी ज़कात होगी?
जी 30,000 तक।
अब वो 30,000 है तो उस पर ज़कात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती,
सही।
अब ये देखेंगे बेचारे का 30,000 है तो खर्चात कितना है,
सही है।
अगर महाना अखराजात के बाद उसके पास कुछ ना कुछ रकम बच जाती है, अब वो जमा होते 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 निसाब 52,500 चांदी को पहुंच रही है, तो अब ये साहिब निसाब होगा और फिर इसका साल शुरू होगा। लेकिन बेचारा 30,000 कमाता है और 30,000 ही खर्च हो जाते
हैं,
बल्कि और भी इधर उधर से पकड़ना पड़ता है,
सही।
तो ऐसी सूरत में ज़कात ही नहीं है,
सही।
तो रकम को जो हम देखेंगे, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बाद होकर इसकी किसी पर लाख सैलरी भी होती,
सही है, लेकिन
1,00,000 से ज्यादा या अखराजात ज्यादा होते हैं तो कुछ बचता नहीं उनके पास। तो अगरचे किसी की सैलरी निसाब से ज्यादा ही हो, लेकिन हाजत असलिया जो उसकी है जरूरत जिंदगी, उसमें सारे खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी।
शरीयत ने जाहिर है मतलब शरीयत के नाज़िर, माल बचेगा पूरा साल गुजरेगा, कितनी शर्तें बयान की गई हैं, उसके बाद ज़कात लाजिम होती है। अब आपकी सैलरी 50,000 है, खर्चा ही 50,000 का है, तो शरीयत ने आपको यूं मतलब तकलीफ नहीं दी कि आप इस पर ज़कात दें, पूरी इसकी शर्तें बयान की गई। जी अगली कॉल लेंगे।
सवाल है ये मेरा कि वो भैंसे वगैरह रखी होती हैं और भैंसों में मज्जे वगैरह भैंसे वगैरह थे ना, उनको तो उनको ऊपर क्या ज़कात है, वो बता दें मेहरबानी।
घर में जो भैंसे रखी होती हैं, मंजियां जिसको कह रहे हैं, दूध वगैरह उससे हासिल करते हैं ये है, तो इन पे उनको चारा ला के खुद ही देते हैं,
सही।
इन पे ज़कात नहीं है,
सही।
हाँ एक ही सूरत है, घर में रखी हुई है इस नियत से, कुर्बानी में जैसे होता है ना पालते हैं उसको बेचेंगे, तो इस नियत से अगर खरीदी थी बेचने की नियत से तो फिर ज़कात होगी, वरना घर के जानवर जो होते हैं जिनको आप चारा ला के दे रहे हैं चाहे कितनी ज्यादा हो, इन पे ज़कात नहीं होगी।
ठीक जी, मजीद को
ज़कात का जो सिलसिला है, मेरे पास आपके पैसे हैं, मैंने किसी को उधार दे रखे हैं, तो उससे ज़कात होती है या नहीं होती?
ये भी होता है कि हमने कर्ज दिया हुआ है,
बिल्कुल ऐसे ही आपने जो लोगों को कर्ज दिया है ना
जी,
उस पर भी ज़कात साल ब साल वाजिब होती रहेगी, जबकि निसाब के बराबर हो या दीगर माल के साल मिलकर। अब मिसाल के तौर पे किसी को आपने 1,00,000 रुपए कर्ज दिया है, अब वो 5 साल के बाद वापसी करता है,
सही,
तो 5 सालों की ज़कात उसमें से देनी होगी।
अल्लाह,
यानी साल ब साल उस पर ज़कात वाजिब होती रहती है,
सही।
निकालना जब वाजिब होता है जब आपको मिल जाए
कब्जे में,
तो इसलिए हम कहते हैं कि आसानी इसी में है कि जब आप दीगर माल में से ज़कात निकाल रहे हैं तो उस रकम का भी हिसाब कर लें जो आपने लोगों को दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, ताकि कल को परेशानी ना हो,
सही।
तो ज़कात तो वाजिब होती ही रहती है, तो साल ब साल उसकी भी ज़कात निकालते, अगर नहीं निकालते तो फिर जब मिलेगी तो इकट्ठी उसकी ज़कात निकालनी होगी।
अच्छा हुज़ूर, हमने ज़कात के मौजू को लिया और काफी गुफ्तगु हुई, विरासत का भी आया। अच्छा, अगर मरहूम का माल तिजारत था और वरासा ने उसको तिजारत ही कंटिन्यू कर दिया, तो अब इस हवाले से क्या फरमाएंगे?
हाँ, अगर ऐसी सूरत थी जो मुरिस जो मरहूम थे उनका कोई माल तिजारत था, उनके इंतकाल के बाद वरासा ने भी उसको माल तिजारत रखा, तिजारत की नीयत रखी, तो ऐसी सूरत में ज़कात होगी। ये वो सूरत है कि मरहूम ने भी तिजारत की नीयत की हुई थी, मरहूम के पास उसकी जिंदगी में माल तिजारत था और उसके इंतकाल के बाद वरासा ने भी उसको माल तिजारत रखा, तो ऐसी सूरत में ज़कात होगी। अगर ऐसा ही नहीं था, यानी मरहूम की अपनी मिल्कियत थी तो माल तिजारत नहीं था, बाद में वरासा के पास उनके इंतकाल के बाद आए जैसे जमीनें वगैरह, अगर जो उसमें तिजारत की नीयत भी कर लें तो ये उस पर ज़कात नहीं होगी जब तक उसको बेचना दें और दीगर शराइत पाई।
लेकिन ये भी बहुत अहम मसला था मदनी चैनल के नाज़रीन, तिजारत के हवाले से, क्योंकि महरूम जो होते हैं वो बाज़ अवक़ात माल तिजारत छोड़ कर ही जाते हैं और फिर वरासा उसको कंटिन्यू करते हैं कि मिसाल वाली साहब ने बड़ी मेहनत से इस माल को बनाया, तिजारत
कारोबार होता है,
कारोबार बनाया, तो इस हवाले से भी बहुत अहम मसला था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। जी मजीद कॉल लेंगे हम।
अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पे सिलसिला चल रहा है, बहुत शौक से देख रहा हूँ, तो बहुत मजा भी आ रहा है। तो मैं वैसे अर्ज करना चाहूंगा, کیا ہے. اللہ کا کرم ہے, مالک کا شکر ہے. جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے, میں نے ایک سال زکات نکالی, تقریباً میری زکات 5,000 سے کچھ زائد نکلی. اس کے بعد اگلے سال آیا تو میری زکات الحمدللہ 13,000 سے بھی زائد نکلی. یہ تجربہ ہے کہ زکات اگر ادا کی جائے تو مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے. تو مدی چرن کے ناظرین بھی ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زکات جو ہے وہ وقت پہ نکالیں, اور ہو سکے تو اسلامی کو بھی اپنی زکات ہمیں پیش کرنی چاہیے.
چلے ہمارے
ماشاءاللہ
ہاتھوں ہاتھ باہر بھی آ گئی, اور یہ ساتھ انہوں نے دعوت بھی دے دی ہمیں کہ دعوت اسلامی کو اپنی زکات پیش کریں. تو یہاں پر میں آپ کو کچھ تفصیل دعوت اسلامی کے حوالے سے عرض کروں کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی تقریباً 100 سے زائد یعنی 100 سے زائد شعبہ جات میں سنت ہوئی خدمت کر رہی ہے, دین کا کام کر رہی ہے. اور جو بڑے بڑے شعبہ جات ہیں جیسے مدرسۃ المدینہ جس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم عام کی جاتی ہے, بچوں کو بچیوں کو قرآن مجید فری کے اندر مفت کے اندر ود آؤٹ پے مطلب پڑھایا جاتا ہے, تو اس کی اس وقت جو تعداد ہے الحمدللہ وہ تقریباً 3,500 تک پہنچ چکی ہے, جس کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو تعداد ہے تقریباً یہ 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. اور جو عملہ ہے جیسے قاری صاحبان ناظمین اور دیگر جو اسٹاف ہوتا ہے ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے, اور اس کا سالانہ خرچہ 1 ارب سے زیادہ. یہ ایک شعبہ. دوسرا شعبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے جامعۃ المدینہ یعنی علماء پروڈکشن شعبہ جس کے اندر عالم بنایا جاتا ہے. الحمدللہ ان کی تعداد تقریباً 606 ہے. اب اس کے اندر جو ہمارے طلباء ہیں طالبات ہیں جن کی تعداد تقریباً 50,000 سے زائد ہے, اور آپ غور کر لیں کہ عملہ کتنا ہوگا تو عملے کی تعداد بھی ہزاروں میں, تو اس شعبے کا خرچہ بھی اربوں تک پہنچ گیا. کیونکہ جامعۃ المدینہ میں جو ہمارے للبنین ہیں یعنی اسلامی بھائیوں کے, ان میں ایک اچھی خاصی تعداد رہائشی ہے یعنی جس میں طلبہ جامعہ کے اندر ہی رہتے ہیں, پھر 3 وقت کا کھانا اور دیگر جو سہولیات ان کو دی جاتی ہیں. تو یہ خرچہ بھی صرف للبنین کی یعنی اسلامی بھائیوں کی اگر بات کروں تو اس کا جو خرچہ ہے سالانہ وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. مدنی چینل جو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اب ظاہر ہے اس پر آپ دیکھیں کوئی ایڈ نہیں آتا, کسی قسم کا اس حوالے سے سلسلہ ہی نہیں ہے, تو اس کا خرچہ بھی 1 کروڑ روپے کے اندر ہے سالانہ. تو یوں دعوت اسلامی کے خرچے 1 ارب روپے میں ہیں. تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ فطرہ دیگر صدقات وغیرہ جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق اگر آپ دیں گے دعوت اسلامی کو, تو دعوت اسلامی شریعت کے مطابق ہی الحمدللہ عزوجل ان کو استعمال کرتی ہے. اور اتنا بڑا دین کا جو کام ہو رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر جس کے اندر 4-5 افراد ہوں کیا وہ گھر پیسوں کے بغیر چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا. تو اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تحریک جس میں اتنا بڑا ایک پورا نظام موجود ہو, پھر مساجد بھی بنتی ہیں مراکز بھی بنتے ہیں, کتنا بڑا کام. اب جیسے رمضان شریف کا اعتکاف کا سلسلہ آ رہا ہے, 1 ماہ کا اعتکاف مختلف مقامات پر ہوگا, یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ یہاں پر اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اعتکاف کے اندر. ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 ہزار اسلامی بھائی, پھر آخری عشرے میں تعداد 7-8 ہزار تک پہنچ جاتی ہے. تو 1 کروڑ روپے کے اخراجات صرف ایک پوائنٹ پر ایک جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہزاروں مقامات پر یہ اعتکاف ہونا, پھر انتظامات. تو یوں دعوت اسلامی کے 1 ارب روپے کے اخراجات ہیں. اگر آپ اپنی زکوٰۃ پھر رمضان شریف میں جو ہم فطرہ دیتے ہیں وہ دیگر صدقات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی اپنے سسٹم کو اچھے انداز میں آسان طریقے سے لے کر چلتی رہے گی. کیونکہ اگر مال کی کمی ہوئی پیسے کی کمی ہوئی تو یقیناً یہ رکاوٹ بنے گا اور پھر پریشانی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. جی مزید کھول لیں گے ہم.
جس دن زکات سونے پر واجب ہوئی تو اس دن کون سی قیمت دیکھی جائے گی, کہ اس دن یہ زیور جو ہے مارکیٹ میں کس دام سے مل رہا ہے, اگر ہم خریدنے جائیں گے تو کیا دام ہوگا, یا خام سونا اس وقت دنیا میں جو ریٹ ہوتا ہے تو ہم جس شہر میں رہ رہے ہوں اس شہر کے خام سونے کا ریٹ لیا جائے گا حساب لگانے کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر.
جی حضور کیا فرمائیں؟
اس صورت میں خام سونے یعنی خالص سونا کا ریٹ نہیں دیکھا جائے گا, آپ کے زیور کا جو ریٹ ہے یعنی یہ جو بیچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں کھوڑ بھی شامل ہوتی ہے. جتنے کیرٹ کا آپ کا سونا ہوگا اور اس کی جو ویلیو ہوگی اس حساب سے زکات ہوگی, خالص سونے کی قیمت اس میں نہیں دیکھی جائے گی.
الحمدللہ کچھ نہ کچھ میرا اس فیلڈ سے تعلق رہا, یعنی 22 کیرٹ کا بھی زیور ہوتا ہے, 21 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے, 18 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے, 14 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 1 تولہ کا آپ کا سیٹ ہے تو اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یعنی 6 گرام 6 گرام اس میں کھوٹ ہے میل ہے اور 6 گرام سونا ہے. तो ज़ाहिर है अब उसकी जो वैल्यू होगी वो तो आधे सोने के बराबर ही रह गई। ज़ाहिर है वो मार्केट के अंदर जब उसके पैसे आप मालूम करेंगे, मिसाल के तौर पर एक तोला का अगर आपका सेट है और एक तोले की कीमत 70,000 रुपये है, तो आपका जो सेट था इसके अंदर 35,000 रुपये का सोना है, क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब?
जी बिल्कुल
यही होगा ना,
असल वही देखा जाएगा। अब ज़ाहिर है जब भी बेचने अपने जेवर को जाएंगे तो वो सुनार वो खोट वगैरह निकाल के
बताएगा,
सोने की कीमत बताता है। तो आपका जेवर जितने कैरेट का है उसकी जो वैल्यू हो इस हिसाब से ज़कात अदा होगी।
जी अभी कॉल लेंगे।
मेरा नाम औरंगजेब कदीर है, मैं शाहकोट से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा था कि अगर हमारे पास सोना या रकम जो है वो पड़ी है, एक साल उस पर गुजर गया, 7.5 तोले सोना है, उससे ज्यादा ही है, लेकिन मैं वो साल के दौरान हमने इस्तेमाल की है, कभी वो कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, तो जो हमें ज़कात देनी है वो कितनी अमाउंट पे देनी है, जितनी हमारे पास कम से कम साल में रही या जितनी हमारे पास एंड पे थी साल होने के बाद, ये मैं पूछना चाहता था।
जी बहुत अच्छा सवाल किया।
इसमें ये देखें, साल के दौरान जो कमी बेशी हो रही है उसका बिल्कुल भी एतबार नहीं करेंगे।
सही,
अगरचे निसाब से कम हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ निसाब से कम, ये देखा जाएगा कि साल के शुरू और साल के एंड में आप साहिब निसाब है या नहीं।
सही।
अब जब जिस दिन साल पूरा हो उस दिन आप देखें आपके पास कितना है सोना, उस दिन का ही एतबार होगा। अगरचे उससे पहले 8 महीने तक उससे कम रहा है,
सही,
और फिर साल पूरा होने से पहले पहले जो है वो पूरा हो गया, उससे जायद हो गया, तो जिस दिन साल पूरा हुआ उस दिन को आप देखेंगे, उस दिन आपके पास कितना सोना है उस हिसाब से आप ज़कात निकालें।
सही जी। मजीद कौल।
अच्छा, अल्लाह बहुत ही प्यारा सलाह है ज़कात के मौजू पे, अल्लाह जल्ला शानहु बरे तलीफ़ता को, बल्ली चैनल को, मुफ्तियाने किराम को सलामत रखे। सवाल ये याद करना था मुफ्तिया की बारगाह में, क्या ज़कात और कुर्बानी के निसाब में फर्क है या दोनों का निसाब ही है?
दोनों का निसाब एक ही है,
ठीक है,
वही 7.5 तोले सोना, 5.5 तोले चांदी, लेकिन दो चीजों का फर्क है।
सही।
ज़कात में एक तो साल गुजरना माल में शर्त है।
सही।
और दूसरी शर्त, एक शर्त ये बयान हुई, माले नामी होना।
सही है,
जैसे हमने माल तिजारत वगैरह कहा, लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है।
सही।
साल पूरा होना शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के दिनों में किसी पर इतनी रकम आ गई निसाब का, उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। और माले नामी होना भी शर्त नहीं है। क्या मतलब? अब यहाँ कुर्बानी में देखेंगे हाजत से जायद जो सामान है, जिस पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि भाई कितना भी, कितने भी प्लाट हो, कितने भी हो, बेचने की नियत में ज़कात नहीं,
नहीं।
ज़कात है लेकिन कुर्बानी है।
सही।
क्योंकि वो गनी है,
गनी है,
वो शख्स ज़कात ले नहीं सकता, गनी है, तो गनी पर कुर्बानी भी वाजिब है और सदका फितर भी वाजिब होगा। सदका फितर और कुर्बानी का निसाब एक ही है।
सही।
तो यहाँ दो चीजों का फर्क है, एक साल गुजरना कुर्बानी में शर्त नहीं है, दूसरा माल नामी होना शर्त नहीं है। जरूरत से ज्यादा जो भी अशिया होंगी और उसकी कीमत अगर निसाब को पहुंचेगी 5.5 तोला चांदी को, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगरचे उस पर ज़कात ना।
यानी हम ये कह सकते हैं कि कुर्बानी गनी पर वाजिब होती है।
जी।
और गनी की कैटेगरी जैसी आप पर आएगी, यानी तारीफ सादी की आ जाएगी गनी होने की, तो आप पे कुर्बानी,
जी, चाहे आपके पास सोना चांदी हो
या ना हो,
सोना चांदी लेकिन जरूरत से ज्यादा
सामान है
जिसकी वजह से
ज़कात लाजिम नहीं हो रही थी,
ज़कात लाजिम नहीं, कुर्बानी लाजिम हो रही।
तो ये थोड़ा सा फर्क है, बड़ा बारीक फर्क है, तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि कुर्बानी के अयाम भी आएंगे जाहिर है, तो उस वक्त भी आपको सहूलत रहेगी। जी अगली कॉल।
मैं जिला शिवपुरा से सवाल ये था कि ये पूछना था कि जो पहली काश्त की जाती है उसके हवाले से, मेरे 10 एकड़ जमीन है तो उसके हवाले से ज़कात कितनी लगेगी?
जी क्या फरमाएं?
देखें असल तो पैदावार पर है ना, तो जितनी भी पैदावार हो तो उस पैदावार पर इन पर उशर होगा,
उशर होगा,
ठीक है ना। बाकी जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं तो जमीन पर नहीं है।
सही।
अब वो जमीन भी उन्होंने जाहिर अपने इस्तेमाल के लिए तो, या इनको विरासत में मिली होगी, बेचने की नीयत से जमीन नहीं ली, जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, तो उस पैदावार पर, उसकी पैदावार पर ही होगी, जमीन पर नहीं होगी। जितनी भी पैदावार हो उस पर उशर यानी उशर लाजिम होगा।
सिलसिले में आखिरी कॉल लेंगे हम।
मेरा नाम नसीम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा किराए का घर है और मेरे पास 40,000 रुपए बचत में है, तो इसकी ज़कात देना फर्ज है और कितनी देनी चाहिए?
क्या फरमाते?
40,000 रुपए बचत है
या बचत हो गई होगी जो जमा करके रख रहे होंगे?
देखें अगरचे किराए का है घर, बल्कि वो लोग जो बेचारे मकान खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं,
सही,
तो वो ये समझ रहे होते हैं कि यार अभी तो क्योंकि मकान तो हाजत में है ना,
सही,
तो हम तो उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं तो उस पर भी जकात होगी। पता नहीं मसरी ये जहन में रखें क्योंकि पैसे आस्ते आस्ते जमा होते हैं,
सही,
तो बेचारे जमा करते रहते हैं तो साल बसा उसकी जकात भी निकालते रहे जबकि निसाब से बराबर या उससे जायद। अब इन्होंने पूछा इनको बचत हो रही है, वही है कि हाजत से जायद इनको निसाब के बराबर बचत हो गई, इन निसाब के बराबर रकम जमा हो गई और इन पर साल पूरा हो गया, तो साल गुजरने पर जो है जकात की अदायगी लाजिम होगी।
मदनी शरीफ के नाज़रीन, ज़कात के मौजू पर आज गुफ्तगू की गई और शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बहुत एक अहम फ़र्ज़ है इस पर हमने गुफ्तगू की, इसके फ़ज़ाइल न देने की वईदें कुछ बयान की गई, फिर किस माल पर होता है माल तिजारत तो दीगर मौजूद को लेकर इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुफ्तगू की। यकीनन जो सिलसिले में शुरू से आखिर तक शामिल रहे बहुत अच्छी उनको मालूमात हासिल हुई होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हमने सुना है जो सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्म है।